अपने राजमहल से कुंवर अभिमन्यु माँ के साथ महल से निकल चुके थे। राजमहल से एक के बाद एक गाड़ियां आगे पीछे निकलीं और लगभग 45 मिनट बाद वे लोग सीधे सूर्यवंशी हवेली पहुंचे। हवेली बाहर फूलों और लाइट से बहुत अच्छी तरह सजी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी होने वाली है। जैसे ही राजवंशी परिवार की गाड़ियां हवेली के बाहर आकर रुकीं, एक नौकर भागता हुआ इप्सिता के पिता के पास आकर बोला, मालिक, इप्सिता बिटिया के ससुराल वाले आ गए हैं। यह आवाज़ सुनते ही इप्सिता के पिता ने सुहासिनी जी और उदय को आवाज़ लगाते हुए कहा, उदयवीर, सुहासिनी जी, जल्दी चलिए, रानी साहब और कुंवर साहब के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आप दोनों हमारे साथ चलिए। जैसे ही इप्सिता के पिता ने ये बात कही, उदय और सुहासिनी जी तुरंत उनके साथ हवेली से बाहर निकले। जैसे ही वे तीनों बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा माँ साहब और कुंवर साहब दोनों एक गाड़ी से बाहर निकले, वहीं दूसरी गाड़ी से अभिमन्यु के चाचा चाची और तीसरी गाड़ी से अभिमन्यु की बहन और जीजा निकले। चौथी गाड़ी में शगुन का सामान और एंगेजमेंट रिंग थी। वो सारा सामान लेकर राजपरिवार के नौकर बाहर आए और सीधे हवेली की ओर बढ़ने लगे। इप्सिता के पिता तेज कदमों से अभिमन्यु के सामने गए और उन्होंने अभिमन्यु को अपने गले लगाते हुए कहा, वेलकम कुंवर साहब। वहीं इप्सिता की माँ ने रानी साहब को गले लगाते हुए कहा, आपको अपने सामने देखकर हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारा जीवन धन्य हो गया। रानी साहब, आपसे मिलने की मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। रानी साहब ने इप्सिता की माँ को मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, कैसी बात कर रही हैं आप सुहासिनी जी, अब तो हम समधी हैं और शुक्रगुजार तो हमें आपका होना चाहिए कि आप हमें अपनी इतनी प्यारी बेटी दे रहे हैं। उदयवीर वहीं चुपचाप खड़ा था। सुहासिनी जी ने अर्पिता और जयराज की तरफ देखा और माँ साहब ने उन दोनों को परिचय देते हुए कहा, ये हमारी बेटी अर्पिता और ये हमारे दामाद हैं। सुहासिनी जी ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आइए बेटा, और आप सब बाहर क्यों खड़े हैं, चलिए हम अंदर चलते हैं। इतना बोलकर सुहासिनी जी और उदयवीर सबको लेकर एक साथ हवेली के अंदर पहुंचे। हॉल में बने हुए स्टेज पर एक बड़ा सा शाही सोफा रखा था। इप्सिता के पिता ने उस पर अभिमन्यु को बिठाते हुए कहा, कुंवर साहब, आप यहाँ बैठिए। अभिमन्यु बिना कुछ बोले चुपचाप उस सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसे बहुत ही अजीब लग रहा था इस तरह से बीच में बैठते हुए। वहां पर ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उन सबकी निगाहें उसे खुद पर ही जमी हुई लग रही थीं। अभिमन्यु को स्टेज पर बिठाकर इप्सिता के माता पिता अभिमन्यु के बाकी पूरे परिवार की आवभगत में लग गए। वहीं इप्सिता पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी थी कि तभी नंदिनी को ये बात पता चली और उसने जल्दी जल्दी अपने बालों को ठीक किया। अपना मेकअप पूरा करते ही वो आईने में खुद को देखते हुए बोली, वाह, मैं तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, कहीं जीजू तेरी जगह पर मुझे ही ना पसंद कर लें। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पता था नंदिनी ऐसी ही है, वो हमेशा खुद की बहुत तारीफ करती है। नंदिनी कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में झांकने लगी। उसने देखा वहां हॉल में सब लोग बैठे हुए थे और अभिमन्यु बैंगनी रंग की शेरवानी और ऑफ वाइट रंग का चूड़ीदार पहनकर स्टेज पर बैठा था। नंदिनी ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि अभिमन्यु पर वो बैंगनी रंग की शेरवानी बहुत जंच रही थी। वो उसे देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गई और भागते हुए कमरे के अंदर आई। उसने इप्सिता के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, यार, सच में जीजू तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, अभी मैंने देखा उन्होंने तेरे लहंगे से मैचिंग शेरवानी पहन रखी है, तू जितनी प्यारी लग रही है वो भी उतने ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, और उनकी आंखें यार कमाल की हैं, उनके चेहरे पर तो पूरा राजसी लुक नजर आ रहा है, उनके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान नहीं है, बिल्कुल राजा सा वाली वाइब दे रहे हैं। नंदिनी को इतना ज्यादा उत्साहित होते देखकर इप्सिता ने उसे चुप करते हुए कहा, बस कर, तू जरा जरा सी बातों पर इतनी ज्यादा ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाती है। नंदिनी ने कहा, ओवर एक्साइटेड नहीं हो रही, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, होने वाली तो बात है, तुझे नहीं पता राजवंशी परिवार को तो मैं अब तक बस नाम का ही राजघराना समझती थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया यार, और तेरे सास ससुर वो भी कितने ज्यादा खूबसूरत हैं, तो उनसे मिली है? इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम उनसे नहीं मिले। नंदिनी ने इप्सिता का अधूरा मेकअप जल्दी जल्दी ठीक किया और उसे आखिरी स्पर्श देते हुए कहा, तू बिल्कुल तैयार हो गई है, अब मैं भी नीचे जाकर देखती हूँ, वरना आंटी को लगेगा मैं काम चोरी कर रही हूँ और तेरे साथ यहाँ टाइम पास। इतना बोलकर नंदिनी जाने लगी तो इप्सिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रहने दे, मत जाओ, तुम वैसे भी मम्मी और पापा है ना, उन्होंने सब देख लिया होगा, तुम यहीं हमारे साथ रहो। नंदिनी इप्सिता के मुँह से बात सुनकर उसके बगल में बैठी और उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, इतना ज्यादा क्यों डर रही हो तुम, वैसे भी सिर्फ सगाई ही तो है, और वैसे भी मैं अभी आ जाऊंगी, एक बार मुझे भी तो नीचे जाने दे, मैं भी देखना चाहती हूँ, शायद कोई मुझे पसंद आ जाए तो मैं भी किसी अच्छे से राजघराने के ही किसी लड़के को पटा लूंगी यार, मेरी भी लाइफ सेट हो जाएगी। इप्सिता ने नंदिनी के कंधे पर मारते हुए कहा, जस्ट शट अप नंदिनी, कैसी बातें करती हो तुम, अच्छा लगता है क्या? नंदिनी ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है, इप्सिता ने अपना सिर पीट लिया। और तभी नंदिनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगी मैं, तुम आराम से यहीं पर बैठो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी कमरे से बाहर चली गई और इप्सिता वहीं कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने बालों को ठीक किया और इप्सिता अपने आप से बात करते हुए बोली, अभी नंदिनी ने कहा कि अभिमन्यु अभी भी काफी उदास है, इसका मतलब वो अभी भी अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं। भला कोई लड़की अभिमन्यु जैसे इतने बड़े राजघराने के लड़के को कैसे धोखा दे सकती है, हमें तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही। शायद इसी वजह से उस दिन अभिमन्यु ने हमें भी वैसे ही समझ लिया होगा और हमने बेकार में ही उन्हें गलत समझ लिया और उन पर चिल्ला भी दिया, हमें इतनी जल्दी उन्हें जज नहीं करना चाहिए था। इप्सिता ये बात सोच रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं अभिमन्यु के लिए सहानुभूति आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। वो बड़ी ही शांति से बैठा था। अभिमन्यु ने अपने मन में कहा, उस दिन शायद राजकुमारी इप्सिता को हम लेकर कोई गलत फहमी हो गई थी और शायद उन्होंने हमें गलत समझ लिया था। अगर आज हमें उनसे बात करने का मौका मिला तो हम उनसे ये बात क्लियर कर लेंगे कि हम उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। वहां मौजूद बाकी सभी लोग अभिमन्यु को ही देख रहे थे और तभी इप्सिता के पिता ने उदयवीर को अभिमन्यु के साथ जाकर बैठने और बात करने के लिए कहा। उदयवीर अभिमन्यु के बगल में जाकर बैठते हुए बोले, कुंवर साहब आप कुछ लेंगे? अभिमन्यु ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो थैंक्स। अभिमन्यु को इतना शांत बैठे देखकर उदय के दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे और उसने बिना किसी झिझक के अभिमन्यु से पूछ भी लिया, क्या बात है कुंवर साहब, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? अभिमन्यु ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। उदय अभिमन्यु से कुछ बोलने जा ही रहा था कि सुहासिनी जी ने उदय को इशारे से अपने पास बुलाया। उदयवीर ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, हमें माँ बुला रही हैं, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उदय वहां से उठकर चला गया। वहां नंदिनी कमरे से बाहर निकल कर आई और वो चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाकर वहां मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। नंदिनी सीधे सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में आई और इप्सिता की माँ के पास जाकर नंदिनी ने कहा,
आंटी मैंने इशू को तैयार कर दिया है, वो बिल्कुल तैयार है, क्या मैं उसे लेकर आऊँ? सुहासिनी जी ने नंदिनी को मना करते हुए कहा, नहीं अभी नहीं, जब सगाई के लिए उसे बुलाया जाएगा तब हम उसे नीचे लेकर आएंगे। नंदिनी ने ओके बोला और उसने कहा, आंटी और कोई काम है या आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो बताइए, मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूं। सुहासिनी जी ने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ अभी जब तक इप्सिता को नीचे नहीं लाना है तब तक तुम ये कुछ गिफ्ट हैं इन्हें उधर सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में जाकर रख दो क्रमशः।